माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जनवल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी राधागिरिधारी जय राधागिरिधारी राधागिरिधारी जय राधागिरिधारी राधा दामोदर जय राधा दामोदर राधा दामोदर जय राधा दामोदर जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा मैया जगन्नाथ निताई गौर हरि बो हरि बो हरि बो हरि बोल निताई गौर जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद महाराज की श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद की निताई गौर प्रेम आनंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम 9.16.33 नौवा स्कंद का 16वां अध्याय है और 33वां श्लोक है। ये मधुछंदसो ज्येष्ठा कुशलम मे निरेन तत असपत् तान् मुनि क्रुद्धो असपत्तान मुनि क्रुद्धो म्लेच्छा भवत दुर्जनाः म्लेच्छा भवत दुर्जनाः ये मधु छंदस्सो ज्येष्ठा कुशलम् मेनिरेन तथा असपत्तान् मुनि क्रुद्धो म्लेच्छा भवत दुर्जना ये मधु छंदस्सो ज्येष्ठाः कुशलम् मेनिरेन तथा असपत्तान् मुनि क्रुद्धो म्लेच्छा भवत दुर्जना मधु छंदस्सो ज्येष्ठा माता जी ये मधु छंदस्सो ज्येष्ठा कुशलम् मेनिरेन तथा असपत्तान् मुनि क्रुद्धो म्लेच्छा भवत दुर्जना ये मधु छंदस्सो ज्येष्ठा म्लेच्छा भवत ये जो मधु छंदस विश्वामित्र के पुत्र जो मधुचंदा कहलाए ज्येष्ठा सबसे बड़ा कुशलम अच्छे स्वभाव का मेनिरे स्वीकार करके नहीं तत व प्रस्ताव असपत साप दे दिया तान उन सबों को मुनि विश्वामित्र मुनि ने क्रोधः कुपित म्लेच्छा वैदिक सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाले भवतः तुम सभी हो जाओ दुर्जना बुरे पुत्र अनुवाद और तात्पर्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा है। श्रील प्रभुपाद महाराज की श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है। जब विश्वामित्र ने सूनसेव को सबसे बड़ा पुत्र स्वीकार करने के लिए कहा तो विश्वामित्र के 50 ज्येष्ठ मधुचंदा इसके लिए राजी नहीं हुए। अतः विश्वामित्र क्रुद्ध हो गए और उन सबों को साप दे दिया, तुम सारे निकम्मे पुत्रों म्लेच्छ बन जाओ क्योंकि तुम वैदिक संस्कृति के नियमों के विरुद्ध हो। तात्पर्य वैदिक साहित्य में म्लेच्छ तथा यौवन जैसे शब्द मिलते हैं। म्लेच्छ वे हैं जो वैदिक सिद्धांतों का पालन नहीं करते। पुराने जमाने में म्लेच्छों की संख्या कम थी और विश्वामित्र ने अपने पुत्रों को साप दिया कि वे म्लेच्छ बन जाएं। किंतु कलयुग में साप देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि लोग स्वयं में ही म्लेच्छ है। अभी तो कलयुग की शुरुआत है, किंतु कलयुग के अंत तक सारे लोग म्लेच्छ हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति वैदिक नियमों का पालन नहीं करेगा। तब कल की अवतार होगा, वह अपनी तलवारों से म्लेच्छों का अंधाधुंध विनाश करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्रीला प्रभुपाद महाराज की, हरे कृष्णा। क्षमा करना, आज मेरा एक्चुअली गला बंद है, बैठा हुआ है, आवाज नहीं है। मैंने दयामूर्ति प्रभु जी को रिक्वेस्ट किया कि और कोई लेक्चर रहेगा तो उन्हें बता दीजिए कि मेरा गला ठीक नहीं है, तो उन्होंने बताया कि नहीं, आप ही को करना होगा। तो मैंने बोला ठीक है, चलो आप वैष्णव के आशीर्वाद से मैं प्रयत्न करता हूँ। आप सब जानते हैं श्री राधा गिरिधारी जी की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री श्री निताय गौरचंद्र की, श्रील प्रभुपाद महाराज की, निताय गौर हे महानंद। आप सब जानते हैं कि वैसे व्यास आसन पर बैठने की मेरी कोई सम्मता ही नहीं है, लेकिन हर थोड़े समय में आप लोगों के आशीर्वाद से और वैष्णवों के आदेश से मैं प्रयत्न करता हूँ। तो कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए और मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि ये जो सेवा दी गई है उसे मैं श्रील प्रभुपाद जी के सिद्धांत और प्रवचनों पर आधारित कुछ ठीक से कर सकूँ। श्रीमद् भागवतम का 9वां स्कंध 16वां अध्याय भगवान परशुराम द्वारा विश्व के क्षत्रियों का विनाश, यह कथा एक्चुअली यहाँ पे समाप्त हो चुकी है परशुराम की, और फिर वंशवली जो आगे बढ़ रही है उसमें विश्वामित्र का वर्णन थोड़ा सा अल्प आया है। प्रसिद्ध संत है विश्वामित्र, हम सब लोग जानते हैं, विशेष करके रामायण में उनका बहुत ही उल्लेख है। पहले क्षत्रिय थे, वशिष्ठ मुनि के संत के जो प्रभाव को देखकर उन्हें इच्छा हो गई थी कि मैं भी क्यों ना ब्रह्म ऋषि बनूं, तो अपना राज पाठ परिवार सब त्याग कर वो आए थे तप करने के लिए वन में। एक ही इच्छा थी कि ब्रह्म ऋषि बनना है और वशिष्ठ मुनि को बता देना है कि मैं भी एक बहुत बड़ा तपस्वी या ऋषि हूं, मैं भी ये सब कुछ कर सकता हूं। क्योंकि तप की शुरुआत जो थी एक ईर्ष्या से शुरू हुआ था, या एक कंपटीशन के भाव में शुरू हुआ था, इसलिए विश्वामित्र को सफलता प्राप्त करने के लिए ज्यादा समय लग रहा था, क्योंकि उद्देश्य सही नहीं था। जब भी किसी साधना का उद्देश्य शुरुआत से ही अगर सही नहीं रहता है तो उसे प्राप्त करने के लिए बहुत समय लग जाता है। लेकिन अगर शुरुआती उद्देश्य सही से किया जाता है तो देखा जाता है कि बहुत ही जल्दी उसका फल मिलता है, क्योंकि सारी साधना जो है उसका फल व्यक्ति के उद्देश्य पे आधारित है, न कि वो कितनी मात्रा में करता है। ये वैदिक सिद्धांत है, उद्देश्य बड़ा बलवान होता है, मात्रा से भी ज्यादा बलवान। कई बार लोग आते हैं इस्कॉन में भी देखते हैं हम लोग, बहुत ही अच्छा सुबह मंगल आरती आएंगे, जप कीर्तन करेंगे, सेवा करें, सब कुछ करेंगे, और फिर देखा जाता है 20-25-30 साल तक भक्त नहीं बन पाते हैं। तो इसका कभी कभार कारण यही रहता है कि उद्देश्य उनका इस्कॉन में आने का रहता है कि कहीं अमेरिका की टिकट मिल जाए, कहीं खाने पीने की सुंदर व्यवस्था हो जाए, कहीं गांव में कुछ किसी का मर्डर किया है तो इस्कॉन में छुप जाएंगे तो कोई पुलिस पकड़ेगा नहीं। ऐसे भी किस्से कभी कभार है, हमारे ध्यान में भी ऐसे अभी भी है इस्कॉन में, तो ऐसा कुछ ना कुछ होते रहता है। तो वैसे व्यक्ति क्योंकि उद्देश्य ठीक नहीं है तो समय लग जाता है उनको भक्त बनने में। हालांकि भक्त बनते हैं, निश्चित ही बनते हैं, लेकिन थोड़ा समय लग जाता है। यहां तक कि कई बार शास्त्र और आचार्य कहते हैं कि पहले कितना भी गलत किया हो और उद्देश्य गलत करके आया हो भक्ति में, लेकिन एक बार भक्ति में आने के बाद, सिद्धांत को समझ लेने के बाद अगर वो दृढ़ निश्चय हो जाता है कि गलत काम नहीं करेगा तो वो आगे जाके एक महान भक्त बन जाते हैं। यही वजह मैंने कई बार देखा है कि राधा कुंड में ऐसे कई बाबा जी लोग अभी हैं, 15-15, 20-20, 25-25 साल से, जो जिनका पूर्व इतिहास देखेंगे या वृंदावन में जब वो आए तब तक का इतिहास देखेंगे तो एक गुनाहित इतिहास रहता है। हाँ, कहीं मर्डर किया है, कहीं कुछ लूट किया है, और छुपने के उद्देश्य से आते हैं ब्रज में, लेकिन बाद में वो सब धीरे धीरे समझ के छोड़ देते हैं गुनाहित प्रवृत्ति। तो बरसों से राधा कुंड जैसे स्थान में रह के तपस्या कर रहे हैं, जहाँ पे रहना बहुत ही कठिन रहता है, वहाँ की गर्मी, वहाँ की ठंडी, वहाँ का वातावरण अच्छे अच्छे लोगों को रहने नहीं देगा सालों साल तक, लेकिन वो लोग रहते हैं और अच्छा भजन कीर्तन कर पाते हैं। तो विश्वामित्र का भी ऐसा ही था, शुरुआत क्योंकि ईर्ष्या से की थी, अनेक समय लगा उनको, और बीच बीच में क्रोध भी बहुत आ जाता था। तो जब जब क्रोध आता तो उनका पुण्य या उनका जो तपश्चर्या का फल था वो खत्म हो जाता, वापस शुरू करते, वापस बढ़ते, वापस खत्म होता, वापस बढ़ते, इस तरह उनके जीवन में अनेक बार घटना घटित हुई। त्रिशंकु का इतिहास भी बहुत ही प्रख्यात है। त्रिशंकु जब उनके पास आया था तो कहता है इसी शरीर में मुझे स्वर्ग में पहुंचा दीजिए। तो विश्वामित्र कहे ठीक है मैं तुमको पहुंचा देता हूं। तो अपना तपबल इस्तेमाल करके त्रिशंकु को स्वर्ग में पहुंचाया, लेकिन इंद्र को यह मंजूर न होने की वजह से इंद्र ने उसे धक्का मार के फेंक दिया, और जब फेंका तो उल्टा गिरता है, और गिरते गिरते ही स्वर्ग से गिरते गिरते चिल्लाता है, विश्वामित्र देखिए मैं गिर रहा हूं, आपका तपोबल फेल हो रहा है। तो विश्वामित्र आश्चर्यचकित हो गए, मेरा तपोबल कैसे फेल हो सकता है, नहीं हो सकता है, कैसे ये इंद्र का मेरे से ज्यादा तपोबल है। क्रोध आ ही जाता है क्योंकि क्षत्रिय परिवार से आए थे ना, तो उन्होंने अपना बचा हुआ तपोबल लगा के एक नया ब्रह्मांड का निर्माण किया, नया स्वर्ग उसमें बनाया, त्रिशंकु को सीधा उधर भेज दिया, नए ब्रह्मांड में, नए स्वर्ग में, उसी मानव शरीर के अंदर उसे भोग विलास करने के लिए भेज दिया। लेकिन उसमें हुआ क्या, उनका तपोबल पूरा कम हो जाता है। यहां पे भी कुछ ऐसी घटना का वर्णन है, यहां बताया गया कि उनके 101 पुत्र थे, जिसे मधु छंदस ऐसे कहा गया है। इसमें 51वां जो पुत्र था, वह पुत्र जो छोटे 50 भाई थे उससे बड़ा, और उसके ऊपर 50 बड़े भाई थे। तो वैदिक नियम के अनुसार जो सबसे बड़ा पुत्र होता है वही घर का, परिवार का मुखिया बनता है, और उसी मुखिया के सिद्धांत और प्रिंसिपल से आधारित उसके आदेशों से परिवार चलता है। लेकिन विश्वामित्र ने देखा कि ये जो 51वां पुत्र है सुना सेफ जिसका नाम है, पुत्र ज्यादा क्वालिफाइड है, यह पुत्र ज्यादा शक्तिमान है परिवार को अच्छी तरह से चलाने के लिए। तो उन्होंने आदेश दिया कि आप परिवार के मुखिया बनिए और बाकी के 100 पुत्रों को बताया कि आप लोग इसका कहना मानेंगे। तो जो 50 छोटे थे उनके लिए तो वैदिक आदेश ही था, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उनसे बड़े भाई थे जिनको स्वीकार करना था। लेकिन जो उनसे 50 बड़े थे वो लोग ये सोचने लगे कि मैं क्यों स्वीकारूं, हमें क्यों स्वीकारना है इन्हें, तो मना कर दिया पिता को। और वेद कहता है कि माता और पिता का आदेश के पालन नहीं करने वाला पुत्र जो होता है वो सजा के पात्र होता है। वो सजा के पात्र होता है, वो वैदिक सिद्धांत का पालन नहीं करता है। इसलिए यहाँ पे श्लोक कहता है, शिला प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि वो म्लेच्छ होता है। कौन म्लेच्छ होता है? जो माता पिता के आदेश का पालन नहीं करता, उसे म्लेच्छ बताया गया है। तो 50 पुत्र ने जब मना किया तो तुरंत ही विश्वामित्र क्रोधित हो गए। ठीक ऐसी ही घटना घटित हुई जब परशुराम के भाइयों ने भी अपने पिता जमद अग्नि के आदेश का पालन करने से मना किया था। वहां पे भी जमद अग्नि जो थे वो क्रोधित हुए थे, ये घटना पूर्व में आती है। लेकिन जमद अग्नि ने सोचा कि किसी भी व्यक्ति को अगर मैं ये श्राप दे दूं कि तुम म्लेच्छ बन जाओ, उससे अच्छा है कि ये मर जाए, ब्राह्मण रहते हुए ही मर जाए, एटलीस्ट स्वर्ग में आएंगे, आगे कुछ प्रगति होगी। हाँ, म्लेच्छ बन के क्या फायदा, म्लेच्छ जीवन बिताएंगे तो नरक में जाएंगे। इसलिए जमद अग्नि जैसे संस्कारी समझदार वैदिक ब्राह्मण जो थे उन्होंने ये आदेश दिया कि इनको मार डालो। लेकिन विश्वामित्र अभी वेद को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो उन्होंने आदेश देने के बदले, उनको मारने का आदेश देने के बदले क्या किया, बोले म्लेच्छ बन जाओ। एक्चुअली मृत्यु से ज्यादा खतरनाक साप है ये, म्लेच्छ बन जाओ, क्योंकि मरेगा आदमी ब्राह्मण था, मरेगा स्वर्ग में जाएगा, म्लेच्छ बनेगा पापमय कार्य करेगा नरक में जाएगा। तो यहां विश्वामित्र कह देते हैं म्लेच्छ बनो, और म्लेच्छ बनना यानी बहुत ही खतरनाक साप दे दिया। हालांकि इसमें विश्वामित्र का सारा पुण्य जो वो खत्म हो जाता है। बस इतनी छोटी सी कथा में, और कुछ आगे था के रूप में रामायण वगैरह में वर्णन है, लेकिन भागवत में ये जो 9वां स्कंद है ना वो बहुत ही ब्रीफली एकदम छोटा सा वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी भाग रहे हैं 10वें स्कंद की ओर, क्योंकि ये 5वां दिन करीबन शुरू हो गया था, 7 दिन में कथा करनी थी ना, 4 दिन पूरे हो चुके थे। अब बहुत कम समय था जिसमें विशेष भगवान श्री कृष्ण का जो 10वें स्कंद का वर्णन था वो करना था, और उसके लिए समय कम होने की वजह से ज्यादा कथा का इधर 9वें स्कंद में विस्तार नहीं किया गया है। 10वें स्कंद का विस्तार क्यों करना था, सुखदेव गोस्वामी जानते थे कि यही एक महत्व का अंग है, लेकिन क्योंकि पहले से ही 10वां स्कंद नहीं लिया जा सकता, सुखदेव गोस्वामी ले सकते हैं, परीक्षित महाराज भी सुन सकते हैं, लेकिन आने वाले लोग जो है कलयुग के म्लेच्छ लोग, वो लोग पहले से ही न सुने तो 10वां स्कंद सुनने का अधिकार उनका नहीं होने की वजह से उनके लिए 1 से 8 स्कंद अच्छी तरह से चलाए, लेकिन 9वां वो भागते रहे, और फिर 10वें में श्रीमद् भागवतम शुरू करते हैं, मुख्य जो उसका मुख्य कृत है वो अंग शुरू करते हैं। यहाँ पे सनातन गोस्वामी इसका एक जगह में वर्णन करते हैं, हरिभक्ति विलास नामक ग्रंथ में दिग्दर्शिनी टीका नाम का, ये उनका ही उन्हीं के ग्रंथ पे किया हुआ टीका है, कि श्रीमद् भागवतम स्कंद का अगर कोई अभ्यास करता है, और वो भी विशेष करके कार्तिक महात्मा कार्तिक महीने में, तो उसे क्या क्या फल मिलता है। हाँ, तो वो फल को थोड़ा हम, क्योंकि आज कार्तिक की शुरुआत हुई है, मैंने सोचा कि क्योंकि ये श्लोक की विशेष कथा है नहीं कुछ ज्यादा, तो कार्तिक में श्रीमद् भागवतम श्रवण करने से या कार्तिक महीने में जो हम भक्ति कार्य करते हैं उससे क्या क्या फल मिलता है उसका कुछ बहुत विस्तार से तो वर्णन नहीं लेंगे, लेकिन कुछ कुछ महत्व वर्णन मैं ले रहा हूं। ये किताब है कार्तिक महात्म्य, सनातन गोस्वामी जी ने लिखा है, हरि भक्ति विलास जो ग्रंथ उन्होंने लिखा है उसी पे टीका किया है, दिग्दर्शिनी टीका। सबसे पहले उन्होंने बताया इन दिस मंथ द मेरिट ऑफ डोनेटिंग 1000 काउस accrues to the person who is awake in front of Sri Damodar at dawn and Sri Vishnu's abode is at hand for someone who is awake during the last yama of the night। ये 62वां और 63वां श्लोक है जहां पे ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर 1000 गाय एक सक्षम व्यक्ति को एक ब्राह्मण को दान देता है तो उससे जितना फल मिलता है उससे कई गुना ज्यादा, कहीं एक जगह पे लिखा है कोटि गुना ज्यादा, कहीं एक जगह पे लिखा है 64 गुना, कहीं एक जगह पे लिखा है 32 गुना। तो अगर कम से कम 32 भी माना जाए तो 32 गुना ज्यादा यानी 32000 गाय किसी ब्राह्मण सक्षम ब्राह्मण को दान करने का जो फल रहता है वही फल कार्तिक महीने में व्यक्ति को मंगल आरती अटेंड करने में मिलता है, ऐसे यहाँ पे लिखा है। यानी जो लोग मंगल आरती अटेंड करते हैं कार्तिक महीने में भगवान श्री श्री राधा गिरिधारी जी की, उसको वो फल रोज मिलता है। तो ये प्रोत्साहन वाली बात है, जिन्हें भी मंगल आरती रोज आना है उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है जिन्हें ये बताया जा रहा है। और मान लो कोई कहे कि नहीं हम तो मंगल आरती नहीं आ पा रहे हैं कुछ कारण से, जो भी हो अगर वो नहीं आ पा रहे हैं नहीं आना चाहते जो भी कारण से, तो साथ में ये भी कहा कि वैसा नहीं संभव है तो रात्रि का जो अंतिम यम होता है उस समय भी अगर आप जप कर बैठेंगे तो वही मिलेगा, यानी लेट रात्र लास्ट यम जो होता है वो कब कितने घंटे का होता है, 3 घंटे का होता है, तो लास्ट यम में 3 घंटे में भी अगर हम जप करेंगे तो वही फल मिलता है। बाय रीडिंग श्री हरिज 1000 नेम और द एपिसोड ऑफ गजेंद्रस लिबरेशन वन विल नेवर अगेन एक्सपीरियंस बर्थ और डेथ। अगर कोई व्यक्ति विष्णु सहस्र नाम रोज कार्तिक महीने में पढ़ता है या गजेंद्र मोक्ष की कथा अगर कार्तिक महीने में पढ़ता है उसको ये जन्म के बाद कभी जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं होगा, समाप्त हो जाएगा हमेशा के लिए। इसलिए बहुत सारे इस्कॉन के भक्त जो है वो कार्तिक महीने में गजेंद्र मोक्ष की कथा निश्चय पढ़ते हैं। सनातन गोस्वामी जी ने बताया कि गजेंद्र मोक्ष की कथा जो पढ़ता है इस कार्तिक महीने में उसका जन्म मृत्यु का चक्कर समाप्त हो जाता है, ये इसका अंतिम जन्म इस भौतिक जगत में रहेगा। इनफैक्ट मधुसूदन इज नॉट एज प्लीज्ड बाय सेक्रीफाइस और बाय चैरिटी ऑफ काउस एंड एलिफेंट एज ही इज प्लीज्ड बाय डिस्कोर्सिस फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स ड्यूरिंग कार्तिक। जो शुरुआत में मैंने बताया ना कि भागवतम सुनने का क्या फल है, यहाँ पे सनातन गोस्वामी कहते हैं कि गाय का दान करने से या हाथियों का दान करने से जितना फल मिलता है या जितनी खुशी मधुसूदन को होती है उससे कई गुना ज्यादा खुशी मधुसूदन यानी कृष्ण को होती है या उसकी कृपा आपको मिलती है अगर आप नित्य श्रीमद् भागवतम का श्रवण इस महीने में करते हैं। यानी जो नित्य भागवतम श्रवण इस महीने में करेंगे, कोई समय नहीं दिया है इसमें इस श्लोक में कि कितना समय तो मुझे प्रश्न हुआ था मन में कई बार जब शुरुआत में ये पढ़ते थे इस्कॉन के दिनों में कि कितना समय, पूरा कार्तिक महीना दिन रात या आधा घंटा या एक घंटा या एक श्लोक। तो पढ़ते पढ़ते आगे सनातन गोस्वामी आगे बताते हैं, केवल एक श्लोक भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा, केवल एक श्लोक का एक जो छंद है यानी चौथा हिस्सा पढ़ेंगे तो भी चलेगा। यहां तक छूट दी गई है यहां पे। बाय ईटिंग ओनली वंस अ डे ही विल बिकम फेमस स्ट्रांग करेजियस। दिन में केवल एक बार ही प्रसाद अगर वो लेगा वो प्रख्यात हो जाएगा, हो सकता है प्रेसिडेंट हो जाएगा इस्कॉन का, स्ट्रांग एकदम ताकतवर हो जाएगा और करेजियस शक्तिशाली या हिम्मत वाला हो जाएगा। आपको करना चाहिए प्रभु जी। हाँ अच्छा, दीपदान का क्या बताया है, सिंस accumulated in millions of kalpas vanish in an instant when a deep is offered during Kartik. Kartik महीने में अगर भगवान मधुसूदन को दीप अगर हम डोनेट करते हैं यानी अर्पण करते हैं, अर्पित करते हैं, तो कोटि कोटि कल्प में जो पूर्व कल्प में जमा हुआ जो पाप है वो उसी क्षण खत्म हो जाता है, उसी क्षण के लिए खत्म हो जाता है। सोचो, बता गया इन मिलियंस ऑफ कल्प, एक कल्प बहुत बड़ा समय होता है, पता नहीं एक कल्प में कितने जन्म हो जाते हैं और एक एक जन्म में हम पहाड़ों जितने बड़े बड़े पापों को जमा करते हैं, लेकिन यहां पे कहा गया कि कोटि कोटि कल्प के पाप भी अगर जमा है तो एक क्षण में वो खत्म हो जाते हैं। मान लो कोई कहे कि नहीं हमारा तो उससे भी ज्यादा है, प्रामाणिक ही कोई कहेगा, अन्यथा कोई नहीं कहेगा ऐसा, लेकिन कोई प्रामाणिक व्यक्ति रहेगा, कोई कहेगा नहीं हमारे तो उससे भी बहुत ज्यादा है, कोटि कोटि कल्पों से भी ज्यादा है। तो आगे सनातन गोस्वामी कहते हैं जब तक वो दीप प्रकट रहा है तब तक अपने पाप जल रहे हैं, खत्म होते जाते होते जाते होते वो प्रक्रिया चालू रहती है। दीप प्रकट है जब तक तब तक होता है। अच्छा, प्रश्न ये होता है कभी कभार कि इसका कोई विधि है, इस तरह से ही दीप प्रकट करेंगे, इसी नियम से करेंगे, बाद में इन नियमों का पालन करेंगे, या दीक्षित व्यक्ति है या समझो इस्कॉन का फॉलोअर है तो ही होगा या किसी भी परिस्थिति में होगा। तो ये ग्रंथ कहता है कि मान लो आपने किसी व्यक्ति को पैसा चुका के भाड़े पे रख के उसको केवल इतना कहा कि दीप प्रगटा के आप पूरे मंदिर को सजा के रखिए, जैसे हम लोग करते हैं ना मायापुर में, मायापुर में पूरा मंदिर दिवाली के दिन सजाते हैं दीप से, तो वहां कोई हमका भक्त लोग ही करते ऐसा नहीं है, उसको मजदूर को बुला के उसको पैसा दे के कहते हैं कि भाई ये हजारों दीप प्रगटा के पूरा मायापुर में सजाओ। तो यहां पे कहते हैं कि अगर मजूरी देकर भाड़ूती व्यक्ति को भी अगर बताया गया और वो भाड़ूती व्यक्ति भी दीप लगा के पूरा मंदिर को सजा रहा है, मंदिर सजाने का कार्य दीप लगा के अगर कार्तिक महीने में करता है तो उस भाड़ूती व्यक्ति का भी सारे पाप खत्म हो जाते हैं, उतना उसको फल मिलता है, भाड़ूती व्यक्ति को भी ये फल मिलता है। मान लो इतना समय नहीं है तो कहते हैं कि एक दीप अगर मंदिर के शिखर पे रख के आता है तो उसको भी वही फल मिलता है, उसका भी वही फल प्राप्त होता है। तो वही सब फल अगर प्राप्त होता है तो क्या विधि छोड़ दें, विधि पालन न करें? हाँ, जैसे ही दामोदर अष्टकम शुरू हुआ खड़े हो जाए दीप ले फटाफट करके निकल जाए। कभी बहुत लोगों को तो ये पता रहता है कैसे करना है क्या करना है, लेकिन कहीं लोगों को नहीं भी पता रहता है कि कैसे करना है क्या करना है, किसी को देख देख के कुछ करते रहते हैं। तो वास्तविक विधि एक्चुअली ये है कि व्यक्ति को दामोदर अष्टकम वैसे तो गाना चाहिए अच्छी तरह से पूरा बैठ के, गाने वालों के साथ में अपना मन चेतना लगा के उसको दोहराना चाहिए, लेकिन क्योंकि मंदिर का समय हो जाता है 8 बजे बंद होने का और दामोदर अष्टकम लेट चलता है, वो अगर शेड्यूल किया जा सके तो बहुत अच्छा है, अगर शेड्यूल नहीं किया जा सक रहा है, कीर्तन एक्सटेंड हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति जाता है दीप लेता है दीप रखता है, दीप देख लेता है, बरोबर चेक कर लेता है कि ये अंतिम मेरा पूजा तक चलेगा। दीप लेकर आता है, सर्वप्रथम केवल दीप को शिला प्रभुपाद जी को अर्पण करते हैं। अर्पण करने का मतलब उनका पूरा पूजा नहीं कर रहे हैं, एक मन के स्तर पे उनसे उनके पास ये दीप बता के प्रार्थना करते हैं कि शिला प्रभुपाद जी, मैं वास्तव में कोई लायक व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक पापी और दुष्ट व्यक्ति हूं, आप ही की कृपा से मुझे ये ज्ञान मिला है, आप ही की कृपा आशीर्वाद से मुझे ये पता चला है और मैं यहां पे हूं, समाव और अदरवेज मैं यहां पे आज हूं, हाँ नहीं तो मैं कहां होता था मुझे नहीं पता था। शायद इस्कॉन और शिला प्रभुपाद नहीं होते तो कार्तिक दीपदान का महत्व शायद बहुत लोगों को पता ही नहीं चलता था जीवन भर, उसमें मैं भी एक हूं, मुझे नहीं पता चलता था। तो वो ऐसे हम्बल भाव से प्रभुपाद जी से परमिशन लेते हुए, आशीर्वाद लेते हुए, हाँ ऐसे दीप दिखा के नम्र भाव से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर जो प्रिसाइडिंग डिटीज जो मंदिर की रहती है उसे पहले अर्पण करते हैं। तो इस मंदिर में सर्वप्रथम प्रिसाइडिंग डिटीज है श्री श्री राधा गिरिधारी जी, हाँ लेकिन उसके पहले निताय गौर चंद्र से आशीर्वाद लेते हैं क्योंकि वो भी भक्त है, भक्त अवतार में है, तो प्रभुपाद जी को ऑफर करके उनसे भी उसी भाव में उसी तरह एक्चुअल आरती नहीं कर रहे लेकिन एक दिखा के आशीर्वाद परमिशन लेकर श्री श्री राधा गिरिधारी जी के पास आते हैं। अगर भगवान के जो पार्षद है जैसे कुंती महारानी, वो लोग दीपदान करेगी तो नाभि से शुरू करती है या मुखचंद्र से कोई शुरू करे, हाँ उनकी प्रेयसी पत्नी रहेगी, लेकिन हम लोग तो दास भी ठीक से नहीं है तो हमारा कर्तव्य है चरण कमल से शुरू करें, हाँ चरण कमल से शुरू करते हुए धीरे 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 आगे बढ़ते हुए मुखचंद्र पे आए। वही पूजा का नियम 4-7 जो भी है वो पुजारी ठीक से बता पाएंगे शायद, अगर वो नहीं समझ में आ रहा है तो पुजारी को पूछकर करना चाहिए। उसके बाद राधा गिरिधारी के बाद जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया, उसके बाद भगवान श्री दामोदर, फिर यशोदा मैया, फिर निताय गौरचंद्र, फिर शिला प्रभुपाद, और वो करने के बाद वहां पे रख के भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि वास्तव में मुझे कोई विधि ठीक से पता नहीं है, नहीं मुझे कोई ज्ञान है, नहीं मेरी कोई लायकात है, आचार्य और वैष्णवों के आशीर्वाद से मैं ये कर रहा हूं तो कृपया इसे स्वीकार कीजिएगा और मुझे अधिकार दीजिए, अधिकार दीजिए यानी मुझे सिखाइएगा कि मैं नम्रता से ये कार्य को पूरा कार्तिक महीना कर सकूं। ओ ब्राह्मणा, सिंस टाइम इमेमोरियल द एंसेस्टर्स आर प्रेइंग, इफ अ सियन हु कैन प्लीज लॉर्ड केशव by this Deepadan would appear in our lineage, we would certainly all become liberated by the mercy of the Lord who has a chakra on hand. 106 और 107 नंबर का ये श्लोक है जिसमें हमारे सारे पूर्वज जब श्राद्ध होता है, पिंडदान होता है, तब ब्राह्मण को ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार में किसी एक व्यक्ति को हे ब्राह्मण ऐसा ज्ञान दो, ऐसा उसे समझाओ कि कार्तिक महीने में जाकर केशव के मंदिर में केशव को दीप दान करे, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा मेरे परिवार का कोई व्यक्ति तो हम सारे पूर्वज जो है वो नरक से छुटकर हमारी मुक्ति हो सकती है। तो कहने का मतलब है हमारे पूर्वजों का भी उद्धार इसी से हो रहा है। और ऐसा यहाँ पे कहा है कि कुछ पूर्वज लोग ब्राह्मण से ये नम्र निवेदन करते हैं कोई तो हमारे परिवार में जाकर किसी व्यक्ति को ये कार्तिक महात्मा बताइए। मैं सभी श्लोकों को नहीं ले रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट मैंने टिक किए उसी को ले रहा हूं। ओ ग्रेट सेज, नो दैट द स्टॉक ऑफ सिंस विल कंटिन्यू मेल्टिंग एज लॉन्ग एज दीप शाइन्स ऑन टॉप ऑफ द टेम्पल। जब तक दीप प्रकट है तब तक अपने पाप बचे कुछ पाप भी जलते जाते खत्म होते जाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि किसी का दीप पूजा करते करते बुझ जाता है ना, ऐसा होता है। तो वो कभी कभार वो व्यक्ति वापस जाके प्रगटा के आता है, लेकिन बाजू में ही कोई वैष्णव है तो उनका कर्तव्य है कि उसे सहायता करें और उसे दीप प्रगटाने में मदद करें। ऐसा कहा गया है कि वो जो सहायता करता है ना, उसका जो पाप जलने का स्पीड है वो डबल हो जाता है, जल्दी खत्म हो जाता है। अब कल से पता चलेगा सब लोग सहायता ही देखते रहेंगे कि चलो किसी को सहायता कर मीन्स जानबूझ के नहीं देखना है, अगर ऐसा मौका आ गया तो दीप देना है उसे। अ पर्सन हु सेटल्स अ दीप ऑन द डोम और विद इन द टेम्पल डिलीवर्स हंड्रेड्स ऑफ जनरेशन इन हिज लाइनेज इवन इफ ही इज हायर्ड। मैंने बताया था ना, अगर वो हायर किया गया है मीन्स उसको तनख्वाह दे के बिठाया है तो भी चलेगा। ये 134 और 35 श्लोक में है। And in the family of those who admire with great devotion the illuminated temple of Lord Keshav, no one will ever experience hell. वो व्यक्ति तो क्या, उसके परिवार में भी किसी को कभी नरक का दर्शन नहीं करना पड़ेगा जो दीप ऑफर करता है। तो ये सारा बहुत सारा महत्व है जिसको मैंने कुछ महत्व को बताया। किसी किसी को कभी कभार ये प्रश्न हो सकता है, विशेष करके जिसका साइंटिफिक बुद्धि रहता है ना, जिसका जिसका वेद पढ़ने का जो स्टाइल रहता है ना, वो बुद्धि या मन के स्तर पे रहता है। भक्त वेद जब पढ़ता है तो हृदय से पढ़ता है शास्त्रों को, वो बुद्धि से नहीं पढ़ता है। वो इस तरह से पढ़ता है कि जो भी इसमें लिखा गया है, हमारे आचार्यों ने बताया है, सब सही है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन जिसकी साइंटिफिक बुद्धि रहती है ना, विद्वान कक्षा के लोग या जिसने भक्ति कभी किया ही नहीं है, ऐसे लोगों का मन में अनेक प्रश्न होता है कि ये सब सही रहेगा कि नहीं, किसको मालूम है क्या होता है। यहां तक के कभी इस्कॉन के भक्त लोग ऐसा प्रश्न करते हैं। अभी कल ही मैंने इंटरनेट पे एक साइट है उसमें मैं पढ़ रहा था कि बरसों पुराना इस्कॉन का एक भक्त ने एक प्रश्न पूछा है ऑनलाइन क्वेश्चन, और वो उत्तर चाहता है सब लोग इस्कॉन भक्तों से। उसका प्रश्न कैसा है देखिए, वो कहता है कि श्रीला प्रभुपाद सेज इन श्रीमद् भागवतम पर्पट द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन अमेरिका इज बीफ इंडस्ट्री। सबसे ज्यादा सबसे बड़ा धंधा अगर अमेरिका में हो रहा है तो वो गाय का कत्ल करके मांस बेचने का है। सबसे ज्यादा कमाई का धंधा अमेरिका में है वो गाय का कत्ल करके मांस बेचने का है, ऐसा श्रीला प्रभुपाद जी ने बताया पर्पट में उन दिनों में। तो अब ये भक्त का प्रश्न क्या है, इंटरनेट पे आया है तो प्रश्न पूछ रहा है ऑनलाइन, हम सबको पूछ रहा है, यानी जिसको भी उत्तर देना है तो जाके दे सकता है, कि अगर गाय का कत्ल इतनी ज्यादा मात्रा में हो रहा है और ये चल रहा है तो गोपाल कहाँ है, गोविंद क्या कर रहे हैं, क्या वो रिटायर हो चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन है उसका। क्या गोविंद रिटायर हो चुके हैं, गौ की रक्षा करने वाले स्वयं भगवान कृष्ण गोपाल या गोविंद क्या रिटायर हो चुके हैं, क्वेश्चन मार्क। उत्तर आप लोगों को देना है इंटरनेट पे ऑनलाइन, क्योंकि कहीं अमेरिका का भक्त है बरसों पुराना है जिसका बचपन गुरुकुल इस्कॉन में बीता है, जो बड़ा इस्कॉन में हुआ है ना। क्यों ऐसा होता है, क्यों शंका आती है, अनेक कारण हो सकते हैं, मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता हूं। अनेक कारणों में एक कारण यह हो सकता है कि अपराध बहुत किए हैं। अपराध करने वाले व्यक्ति का सबसे बड़ा लॉस यही है कि भगवान से भरोसा उठ जाना, इससे बड़ा कोई लॉस व्यक्ति का इस्कॉन में नहीं हो सकता है। धन चला जाएगा मंजूर, कैंसर हो जाएगा मंजूर, मृत्यु हो जाएगी मंजूर, पूरा जीवन समझो अपंग रहेगा मंजूर, बीमार रहेगा मंजूर। भगवान से अगर विश्वास उड़ गया, शास्त्र से अगर विश्वास उड़ गया, तो उसका केवल एक ही जन्म का नहीं, आने वाले करोड़ों जन्मों का नुकसान अभी से ही हो गया, जैसे इस व्यक्ति का प्रश्न है। विश्वास बहुत महत्व की चीज होती है, और विश्वास होता है ना तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी स्वयं भगवान आके भी उनके कार्य संपन्न कर सकते हैं। एक बार की सदघटना है, श्री बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन के इतिहास में लिखा गया है, आज भी इस्कॉन की जो बोनाफाइड इस्कॉन की जो रजिस्टर्ड साइट है उसमें यह सब बताया गया है। एक व्यक्ति था, कहीं बाहर रहता था, लेकिन उसको नौकरी मिली मथुरा वृंदावन में, रेलवे में काम करता था, टीसी का जॉब मिला। और उसकी जो जॉब मिली वो मथुरा वृंदावन के बीच में जो शटल गाड़ी चलती है ना दिन में 3-4, उसमें वो टीसी का जॉब उसे मिला। तो उसको किसी ने बोला था कि वृंदावन में अगर जा रहे हो जॉब करोगे तो एक नियम बनाओ कि रोज बांके बिहारी का दर्शन करोगे, क्योंकि वृंदावन के बांके बिहारी है। बहुत पुरानी घटना होने की वजह से हो सकता है उस समय और कोई मंदिर ज्यादा सिद्ध नहीं थे, लेकिन बांके बिहारी मंदिर वृंदावन का सबसे पुरातन और प्रसिद्ध मंदिर है। तो बोले बांके बिहारी जी का दर्शन कीजिए और आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा भक्ति का। तो बस किसी ने बताया, विश्वास कर लिया और शुरू कर दिया। तो रोज आते थे, बांके बिहारी जी का दर्शन करते थे, गाड़ी वृंदावन से मथुरा आएगी, टिकट चेक करते आएंगे, मथुरा 2 घंटा रुकती है, दौड़ के आएंगे, बांके बिहारी का दर्शन करेंगे, वापस मथुरा से वृंदावन का टिकट चेकिंग कार्य संपन्न करते थे। एक दिन क्या हुआ, गाड़ी मथुरा से वृंदावन आई, वो उतरे, दौड़ के गए, लेकिन ट्रेन लेट हुई थी उस दिन, तो बांके बिहारी जी का दोपहर का मंदिर का दर्शन बंद हुआ। अब मंदिर आधे घंटे के बाद खुलेगा, यानी आज उनको दर्शन नहीं मिल सकता, लेकिन उनको विश्वास था, किसी भक्त ने बताया है, और विश्वास और श्रद्धा की उसकी जो पूंजी थी ना वो बहुत ही ज्यादा थी। बोले ठीक है, आधा घंटा रुकूंगा। वो भक्त था, हृदय से सोच रहा था, बुद्धि ने बताया ट्रेन चली गई तो तुम्हारी नौकरी जाएगी, सोचा नहीं कुछ, रुका, दर्शन खुला, दर्शन किया, फिर गया और सचमुच स्टेशन पहुंचा था, ट्रेन चली गई थी। और ट्रेन चली गई मतलब टीसी का जॉब गया, क्योंकि एक ही टीसी है उस ट्रेन के लिए, अपना ड्यूटी नहीं किया, कहां गया पता नहीं है, टीसी का जॉब गया, उसको मालूम है कि अब सरकारी नौकरी मेरी गई। तो उसने सोचा कि वो लोग मुझे जबरदस्ती निकालें, मेरा अपमान करके डांट के, उससे अच्छा है मैं ही रेजिग्नेशन लेटर लिख के मथुरा जाके रेलवे सुपरिटेंडेंट के हाथ में सौंप देता हूँ, इज्जत से नौकरी से निकल जाता हूँ, क्यों अपनी डांट का और फिर रेजिग्नेशन लेटर में लिखा जाएगा कि अच्छी तरह से ड्यूटी नहीं की इसलिए इसको निकाला जाता है, और जब रेजिग्नेशन दूंगा तो खुद ही वैसे लिखा जाएगा कि खुद आके रेजिग्नेशन दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टीसी गया, रेजिग्नेशन लिखा रिक्शा से मथुरा पुलिस रेलवे स्टेशन, और सुपरिटेंडेंट को दे रहा है कि ये लीजिए मेरा रेजिग्नेशन। तो बोले क्यों, रेजिग्नेशन क्यों दे रहे हो, अभी 5 मिनट पहले आके पूरा तुमने हिसाब किताब तुम्हारा दिया, ट्रेन का चार्ट दिया, टिक किया हुआ, हिसाब किताब हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, आज तुम्हारी और आगे की ड्यूटी नहीं है, छुट्टी है, जाओ आनंद करो, रेजिग्नेशन देने क्यों आए हो। तो टीसी मन में सोचने लगा, अरे मैं 5 मिनट पहले कहां आया, मैंने तो ड्यूटी किया ही नहीं है, मैं कैसे आया, क्या हुआ। तो उसको पूछा मैं कभी आया, अरे अभी तो तुम आए थे। बाहर जाके बांके बिहारी बाय बाय करके चले उसी रूप में, वो बांके बिहारी स्वयं उसके लिए गए थे वहां, उसका सब डॉक्यूमेंट सबमिट किया और उसको बचाया। तो कहने का मतलब है विश्वास एक बड़ी पूंजी होती है, विश्वास है आदमी इसी एक कार्तिक महीने के एक ही दिन में भक्त बन सकता है, विश्वास नहीं है हजारों कार्तिक महीने हम निकालते हैं हमको पता नहीं चलता है प्रगति। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि फल नहीं मिल रहा है, फल मिल रहा है, लेकिन स्लोली स्लोली धीरे 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 मिलता रहता है। एक्चुअली समय हो गया है, नहीं तो मैं और बांके बिहारी जी की कथा बताना चाहता था, ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं जो कार्तिक मास के संबंध में बांके बिहारी जी ने जो लीला करके अपने भक्तों का विश्वास बढ़ाया है, लेकिन फिर कभी बताऊंगा। हरे कृष्णा, लीला प्रभुपाद की जय। क्षमा करना, आज मेरा गला भी बैठा हुआ था तो मैंने ठीक से नहीं किया है। हरे कृष्णा।